नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर ए जयशंकर ने कहा, भारत जापान के बीच साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने में योगदान देती है। बिहार में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियां पूरी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर आज सुबह रेलगाड़ी की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। गुरु नानक जयंती और देव दीपावली देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और फिलीपींस में तूफान कालमेगी से 66 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर ए जयशंकर ने कहा है कि भारत जापान के बीच साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में योगदान देती है। नई दिल्ली में 8वें भारत जापान हिंद प्रशांत मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ दशकों में दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत हुई है और ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा है कि भारत जापान सहभागिता को अपनी क्षमताओं का लाभ उठाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष में निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विदेश मंत्री ने उल्लेख किया है कि दो प्रमुख लोकतंत्रों और समुद्री राष्ट्रों के रूप में भारत और जापान की हिंद प्रशांत के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है।
दो प्रमुख लोकतंत्रों और समुद्री राष्ट्रों के रूप में भारत और जापान की हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। हिंद प्रशांत महासागर पहल, जिसमें जापान समुद्री व्यापार, परिवहन और संपर्क स्तंभ का सह नेतृत्व करता है, हमारे योगदान को और आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की हालिया बातचीत पर जोर देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये दोनों देशों द्वारा अपनी साझेदारी को दी जाने वाली प्राथमिकता को दर्शाता है। बिहार में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर सहित 18 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी 45,341 मतदान केंद्रों के वेबकास्टिंग किए जाएगी।
पहले चरण के चुनाव में एनडीए की ओर से सबसे अधिक 57 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, वहीं भाजपा 48 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के सबसे अधिक 73 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के 24 और सीपीआई माले के 14 प्रत्याशी पहले चरण में चुनावी मुकाबले में हैं। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले विकासशील इंसान पार्टी ने 5 प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जनसुराज पार्टी ने 119 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा इस चरण में प्रमुख प्रत्याशियों में शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार पटना।
निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आंकतुक कार्यक्रम 2025 की शुरुआत की। इसके अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कोलंबिया के 14 प्रतिभागी कल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान देखेंगे। आयोग ने कहा है कि कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के 2 दिन के दौरे में प्रतिभागी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रेषण केंद्रों का दौरा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर आज सुबह रेलवे ट्रैक पार करते समय कालका हावड़ा मेल रेलगाड़ी की चपेट में आने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार गंगवार ने बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन स्नान के लिए श्रद्धालुओं को लेकर गमो प्रयागराज बारवाड़ी पैसेंजर रेलगाड़ी सुबह 9:15 पर सोनभद्र से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उतरने के बजाय श्रद्धालु दूसरी तरफ उतर गए और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने के लिए पटरी पार करने की कोशिश की, परंतु वहां से गुजर रही कालका मेल रेलगाड़ी की चपेट में आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री तथा स्थानीय सांसद अनुप्रिया पटेल ने घटना पर शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने, राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व आज धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 1469 में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ननकाना साहिब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ईश्वर पर एक है का संदेश दिया। वे एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जीवन समानता, ईमानदारी, दयालुता, सत्य और प्रेम की शिक्षा देती है। एक रिपोर्ट।
पंजाब में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में माथा टेक रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा बेर साहिब, जहां गुरुजी ने 14 साल 9 महीने और 13 दिन तक एक बेर के पेड़ के नीचे बैठ ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया था, और अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर सहित सभी गुरुद्वारों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। राज्य भर के गुरुद्वारों सहित अन्य स्थानों पर भी लंगर की सेवा की जा रही है और गुरबानी कीर्तन जारी है। शाम को अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब और दूसरे गुरुद्वारों में दीपमाला और प्रदूषण मुक्त आतिशबाजी की जाएगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल चैट केटी परनायक ने आज नाहरलगन स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी राज्यवासियों, विशेषकर सिख समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि गुरु नानक जयंती एक ऐसा पर्व है जो सभी को याद दिलाते हैं कि धर्म का असली सार सच्चाई, ईमानदारी से जीने, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने और हर इंसान में भगवान की ज्योति को पहचानने में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शांति, विनम्रता और मानवता की सेवा का उनका संदेश आज की तेजी से बदलती दुनिया में भी बहुत मायने रखता है। राज्यपाल ने हर नागरिक से अपने जीवन में विनम्रता, ईमानदारी और प्यार की भावना को अपनाने का आग्रह किया। देव दीपावली आज मनाई जा रही है। इसे दीपोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट।
देव दीपावली का अर्थ है देवताओं की दिवाली। ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। देव दीपावली दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार आज के दिन देवता पवित्र गंगा नदी में स्नान के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। इस रात वाराणसी वास्तव में प्रकाश नगरी काशी बन जाती है, क्योंकि असंख्य दिए देवताओं के स्वागत का दिव्य संदेश देते हैं। दियों की झिलमिल दीप मालिकाओं का ये अद्भुत मिलन सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। नदी के घाट, मंदिर और घर के छत दियों की रोशनी से जगमगाते हैं। गंगा नदी में दियों के प्रतिबिंब से प्रकाश की एक झिलमिलाती आकाश गंगा बन जाती है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
फिलीपींस में इस साल के सबसे भीषण कालमेघी तूफान से 66 लोगों की मौत हो गई है। तूफान से लाखों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। ये तूफान कल सुबह तट पर पहुंचने के बाद से कमजोर पड़ गया है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन राष्ट्रीय का अनुमान है कि 49 मौतें सेबू में हुई है। इसमें से ज्यादातर मौतें मलबे और दब जाने से भूस्खलन, बारिश और बाढ़ के कारण हुई है। तूफान के वियतनाम की ओर बढ़ने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। जीएसटी दरों की कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से नागालैंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
नए जीएसटी सुधार नागालैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए कर ढांचे के अंतर्गत 7,500 रुपए तक की कीमत वाले होटल के कमरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके कारण होटल में रहना अधिक किफायती हो गया है और नागालैंड राज्य में पर्यटन के व्यापक विकास को समर्थन मिला है। नए जीएसटी सुधारों ने नागालैंड कॉफी के लिए भी नए अवसर पैदा किए हैं। भुनी हुई फलियों पर दरें 12% से घटाकर 5% और कॉफी के अर्क पर 18% घटाकर 5% कर दी गई है। इस कमी से कुल लागत 6.25% से 11% तक कम होने की उम्मीद है। शिवांग मिश्रा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और बादल में गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इसी प्रकार स्थिति पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी रहने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश की अंजाव, लोहित, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।